लोगों की आदत बनी हुई है कि हम सत्संग की बातें सुने, ये आदत अच्छी है, परंतु अपना स्वभाव बदलने में इतना उत्साह नहीं दिखाते। सुनने में जितना उत्साह है उतना उत्साह स्वभाव सुधारने में नहीं बनाते। इसलिए आप लोगों के सामने कुछ सभ्यता की बात बताने की इच्छा हुई। सभ्यता कहो या सदाचार कहो, एक ही बात है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसार में कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, उसमें गुण अवश्य रहता है। तो हम लोगों का काम किसी का गुण ग्रहण करने का है। यदि किसी का अवगुण हो तो उसका त्याग कर दो, ऐसा अवगुण अपने को अपने अंदर हो तो छोड़ देना है। दूसरे में अवगुण दिखे तो अपने अवगुणों अपने में देखना चाहिए, ये अवगुण अपने में न आ जाए इसको छोड़ दो। तुलसीदास जी ने कहा कि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभयन देखिए देखी सो अविवेक। ईश्वर की मायाकृत सृष्टि में बहुत से गुण और दोष है, कोई गिनती नहीं है। गुण और अवगुण दोनों को नहीं देखने का नाम गुण है, ये बाद की स्थिति है। पहले की स्थिति है कि गुण ग्रहण करते जाओ। सबसे पहले हम व्यापार की तरफ ध्यान दिलाने की बात बोलते हैं। व्यापार सच्चाई से करना चाहिए। व्यापार में जैसी सच्चाई ईमानदारी अंग्रेजों में थी, वैसी हिंदुस्तानी भाइयों में नहीं है। अंग्रेजों का गुण ग्रहण करना चाहिए। अंग्रेज लोग जो सच्चाई का व्यापार करते हैं वे व्यापार की उन्नति के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं करते। आप ये कह सकते हो कि हम तो आत्मा के कल्याण के लिए व्यापार करते हैं, तो हमारा लक्ष्य ऊंचा है। आपने अंग्रेजों का व्यापार ऊंचा कैसे बताया? हम लोगों की मेरी दृष्टि दूसरी है। अंग्रेज व्यापार में सच्चाई का व्यवहार करते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। वो सच्चाई केवल व्यापार बढ़ाने में है। आप लोग आत्मा की कल्याण की बात बोलते हैं, परंतु आपके अंदर व्यापार में सच्चाई है ही नहीं। हम ये बताना चाहते हैं कि व्यापार की उन्नति में वे सच्चाई अपनाते हैं और आप कल्याण में सच्चाई नहीं अपनाते। यदि आप लोग सच्चाई और निष्काम भाव को लेकर व्यापार करें तो आपका व्यापार श्रेष्ठ हो सकता है। अंग्रेजों के व्यापार की आज दुनिया में छाप है, ऐसी हमारे हिंदुस्तान की छाप नहीं है। अंग्रेजों की सच्चाई का एक यह भी महत्व है कि उनके माध्यम से जो भी सौदा होता है उसमें यदि बाजार मंदा हो गया तब भी वे उस सौदे को घाटा खाकर भी स्वीकार करते हैं, बेईमानी नहीं करते। और सौदे में तेजी आती है तभी जिसके नाम सौदा है उसको वह सौदा दिया जाता है, लोभ में पड़कर बेईमानी नहीं करते। और हम लोग गेहूं चावल कपड़ा खांड सूत आदि का व्यापार करते हैं और कभी संयोग वश बाजार घट जाए तो क्रेता अपने सौदे को कोई भी बहाना बना करके नहीं लेता, कि क्या करें, अभी तो हमारे गोदाम खाली नहीं है, अभी हमारे व्यापारी ने यूं कह दिया, नया नया बहाना बना लेते हैं। यदि माल भेज दिया जाता है तो उसमें कमी निकाल कर कटौती कर दें, साहब आपकी तो रुई अच्छी नहीं है, ये बेईमानी करते हैं। तेजी आती है तब उसे बेचे गए माल में खोट मिला देते हैं ताकि वजन बढ़ जाए माल का और पैसा ज्यादा मिले। सूत की गांठ है, वजन कम कर देते हैं या बनावटी खोट उसमें मिला देते हैं, रुई के सौदे में खराब रुई मिला देते हैं। जब सामने वाला व्यापारी कहता है कि भाई साहब ये तो रुई खराब है, हमने इसका सौदा थोड़ा ही किया था, सौदा के समय तो आपने हमको बढ़िया रुई का सौदा करवाया था, वो रुई लेनी चाहिए, तो कहते हैं वो माल यही है, हमने तो यही दिखाया था, इच्छा है तो ले, नहीं तो मत ले, सौदा आपका कैंसिल कर दो। बोलने में जरा सी भी शर्म नहीं आती, पर अंग्रेजों में ऐसी बात नहीं है, वे सच्चाई ईमानदारी से लेन देन का हिसाब रखते हैं। वे व्यापारी को उसका खरीदा हुआ माल देते हैं, चाहे बाजार कितना ही तेज क्यों न चला जाए, बेईमानी नहीं करते। और सौदा किए हुए माल में जब कभी लाट घाट का माल रहता है तब उस माल को जितना बट्टा होना चाहिए उस बट्टे से भी और अधिक नुकसान खाकर वो माल बेच दिया करते हैं, ताकि ग्राहक की कोई हमारे व्यापार में शिकायत न हो। फिर भी यदि ग्राहक शिकायत करता है तो शिकायत को ध्यान से सुनते हैं, हम लोगों में ये बात है ही नहीं। अंग्रेज की चाहे कंपनी फैल क्यों न हो जाए पर वे जल्दी से बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए अंग्रेजों की साख है। बाजार में जब माल खरीद बिक्री का होता है तब पूछा जाता है कि खरीददार कौन है, यदि हिंदुस्तानी है तो मुंह बिचका देते हैं, अंग्रेज है तो सावधानी आती है। वह यदि माल की कीमत 4 पैसा कम भी देता है तब भी सामने वाली पार्टी अंग्रेज को बेचना चाहती है, क्योंकि वे जानती हैं कि ये जानते हैं कि ये व्यापारी जिस माल का सौदा करते हैं उस माल को चाहे कुछ भी हो जाए माल को उठाएंगे, रखेंगे नहीं, इनकार नहीं करेंगे। इस सौदे की कीमत गिर जाने पर भी जिस भाव में सौदा किया है वो कीमत देंगे, कम नहीं देंगे। दूसरे व्यापारियों को उस व्यापारी के लेने पर भी नहीं बेचना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं यदि किसी कारण उस बाजार गिर गया तो ये हिंदुस्तानी लोग माल में झूठ ही कमी निकाल देंगे। उस फार्म को माल खरीदते समय सस्ता मिलता है, बेचते समय माल तेज दाम में बिकता है, खरीदना होता है 4 पैसा अधिक देकर उस फार्म से खरीदता है। इस प्रकार आप लोग देखें कि सच्चाई का व्यवहार करने में प्रत्यक्ष में लाभ है, अंग्रेजों को कितना लाभ होता है। जो लोग व्यापारी हैं वे उस उदाहरण को ठीक समझें, लोभ लेकर काम नहीं करना चाहिए। सच्चाई के कारण व्यापार में जितना आयकर अंग्रेज लोग देते हैं उतना नहीं देते, वे तो आयकर इनकम टैक्स अपने आप ही सरकार के अंदर ले जाकर जमा करा देते हैं, इसलिए उनके बही खाते को चेक करने का काम नहीं पड़ता है। और यदि कोई चेक भी करे तो उनके यहाँ कोई दुराव छिपाव चोरी है ही नहीं। हम लोगों के व्यापारी वर्ग में बड़ी बेईमानी आ गई, खाता भाई और का और ही होता है। आजकल बही खाता चेक करने वाले भी बेईमानी व्यापारी से मिल करके नकली बही खाते का चलाने का प्रोत्साहन देते हैं, कहावत है चोर व कुतिया मिल गई तो पहरा किसका देवे। इस प्रकार अंग्रेजों में और अनेक प्रकार की सभ्यता है। जब एक समय था अंग्रेजों की सभ्यता हमारी सभ्यता के अंतर्गत थी, आज वे इस मामले में आगे बढ़ गए हैं, हमारी सभ्यता लुप्त तो हो रही है। अब भी हमारे देश में बोलने चालने बैठने आदि की सभ्यता मौजूद है, बंगाल में कहीं पर भी सभा का आयोजन होता है, उसमें कोई भी आदमी भले ही वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, जब सम्मिलित होता है तब सभा में सबको हाथ जोड़कर, हाथ को नीचे करके जाता है, वह किसी को लांग कर नहीं जाता है। जब सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सभा से उठकर बाहर जाता है तब नीचे की ओर झुककर जाता है, अपने हाथ को आगे झुकाकर जाता है। मुख की मुद्रा बड़ी विनयशील होती है और सभा के अंदर अपने व्यवहार से किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। हम लोगों की तरह बंदर की तरह उछल लांग कर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों की सभ्यता बड़ी चढ़ी है, लेकिन उन पुस्तकों में ही रह गई सभ्यता और सदाचार की बातें, हम उसको भूलते जा रहे हैं, व्यवहार में नहीं लाते। हमारे शास्त्रों ने बताया है कि जब गुरु और शिष्य परस्पर में वार्तालाप करें तब उनके बीच में से नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना ही जरूरी काम हो, क्योंकि इससे ब्रह्म विद्या का अपमान होता है। अभी अपने ये भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कोई यूं जाए तो ये भगवान का अपमान है। एक विद्वान ब्राह्मण अग्नि के पास बैठा हो तो उनके बीच में से नहीं जाना चाहिए, आगे तो वो वेदी है, यहां ब्राह्मण निकल गए हूं, ऐसा नहीं जाना चाहिए। चाहे उसने अभी हवन की तैयारी न की हो तो भी ऐसे बीच में नहीं जाना चाहिए। अपने से पूजनीय व्यक्ति कहीं पर बैठे हुए हो उनके भी सामने नहीं जाना चाहिए, पीछे से जाना चाहिए। अंग्रेजों में अधिकांशतः बहुत सी बातें हमारी पुरानी सभ्यता से ली हुई मालूम देती है, इसलिए अंग्रेजों की सभ्यता के मूल में हमारी पुरानी सभ्यता है। खेद की बात है कि हम उस मूल सभ्यता की ओर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों में मर्यादा का खूब सूक्ष्म विचार किया है। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर कथा आती है, अब तू ही जाएगा बीच में से। छांदोग्य उपनिषद में बहुत सुंदर कथा आती है, बहुत बढ़िया बात है। चाकरायण नाम के एक ब्राह्मण थे, चाकरायण। एक बार उनके देश में अकाल पड़ गया। चाकरायण एवं उनकी स्त्री को कहीं पर भी खाने को नहीं मिला। भूख के कारण उन लोगों के प्राण निकलने की तैयारी हो रही थी। अब कहाँ खाए बेचारे गरीब ब्राह्मण, कुछ था नहीं पास में। तब चाकरायण अपनी कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगे कि कोई खाने पीने का प्रबंध हो। इतने में ही देखा कि एक महावत हाथी को खिला रहा है। तब चाकरायण उस महावत के पास गए और कहने लगे कि महावत, मैं भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दो। महावत अनाज, हाथी को जो अनाज खिला रहा था उसी अनाज में से चाकरायण को खाने के लिए दे दिया। वो अनाज भिगोया हुआ था। चाकरायण ने उस अनाज में से आधा अनाज अपनी धोती के पल्ले में बांध लिया और आधा अनाज खा लिया। जितना दिया ना उसमें से आधा अलग कर लिया और आधा वो खा लिया। आधा अनाज अपनी स्त्री के लिए बांध लिया, क्योंकि वह उसका आधा अंग है और भूखी है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि स्वयं पहले खाता तब वह उसका बचा हुआ कहलाता। जो लेकर के खाते खाते आधा बचता ना, वो ठीक नहीं था, वो तो उसके खाने में से बचा है। पर उसने खाने से पहले ही आधा अलग निकाल दिया तो वो स्त्री का अपना अधिकार का रह गया। तो इस बात से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने खाने से बचा हुआ अन्न स्त्री को नहीं खिलाना चाहिए, अपने को तो यही लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। फिर भी यदि स्त्री अपने खाने के बाद बचे हुए अन्न को खाना पसंद करती है या खाती है तो ये उसकी इच्छा है। स्त्री ये कहे कि नहीं पहले आप खाओ, आपके खाने के बाद बचेगा तो हम खा लेंगे, ऐसा यदि वो बोलती तो उसकी इच्छा है। हमारी नियत ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम लोग पहले खा ले और बाद में बचेगा वो स्त्री खा लेगी, ऐसा नहीं रखना चाहिए। और आगे सुनो, जब चाकरायण ने अपना आधा हिस्सा खा लिया तब महावत ने चाकरायण से कहा कि पंडित जी थोड़ा जल भी पी लो। तब चाकरायण ने महावत से कहा कि नहीं नहीं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, तुम्हारे हाथ का जल पीने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। महावत को बड़ा अचंभा हुआ, वो हंसने लगा और कहने लगा महाराज मेरे हाथ का भिगाया हुआ अनाज तो खा लिया और वो पानी पीने में अब आपको क्या आपत्ति हो गई, कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब मेरे हाथ का जल पीने से कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया आपका, ये अनाज और इसमें पानी तो मेरा ही तो हाथ था, इस अनाज को भिगोने में भी तो मेरे ही हाथ का जल था और ये अनाज भी हाथी का खाया हुआ जूठन उसमें से मैंने आपको दिया है, तो हाथी के जूठन में से बचे हुए अन्न को खाने में आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ और मेरे हाथ का पानी पीने से अब आपको धर्म भ्रष्ट की बात याद आ रही, क्या बात है। चाकरायण ने उत्तर दिया महावत धर्म की बहुत गहरी बात है, वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, मैं इसका रहस्य बताता हूं। जिस समय मैंने तुम्हारे हाथ का भिगाया हुआ अनाज खाया था उस समय मेरे प्राण निकलने वाले थे, यदि तुम मुझे न मिलते या अनाज नहीं देते तो मैं मर जाता, पर तुमने मुझे दिया मेरे प्राण बच गए, इसलिए तुम्हारे हाथ का भिगाया हुआ अन्न उस समय प्राणों की रक्षा के लिए खाया था तो वो उसके साथ जो पानी गया और अन्न गया वो मेरे लिए छूट है, लेकिन अब मैंने जब ये अन्न खा लिया मेरे शरीर में शक्ति आ गई, प्राणों को आधार मिल गया, अब मेरे प्राण निकलने जैसी स्थिति नहीं है तो अब तुम्हारे हाथ के पानी पीने की छूट नहीं है, इसलिए मैं यहां पानी नहीं पी सकता, अब तो नदी के किनारे जाकर पानी ला सकता हूं पी सकता हूं, अतः वहीं जाकर पानी पीऊंगा। वो एकदम आपत्ति का काल था, अब आपत्ति तो नहीं रही, तो ये धर्म की कैसी सूक्ष्म गति है। उस समय केवल पानी पीने मात्र से धर्म नष्ट हो सकता है, पर उससे पहले आपत्ति काल में धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना हमारा सबसे ऊंचा धर्म है, क्योंकि ये प्राण रहेंगे तो हम भगवान का भजन कर सकेंगे, इसलिए हमको शास्त्र ने छूट दी थी। धर्म की गति में और भी छूट है, बहुत ही कम समय के लिए बहुत छूट दी गई है। अब आजकल तो हम लोग बहानाबाजी बना करके धर्म को बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने लग गए, उसका बड़ा भारी अधर्म पाप हमारे पल्ले पड़ गया। महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है, एक समय की बात है, कुछ डाकू एक ब्राह्मण की गाय चुरा ले लेकर चले गए। ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर पुकार लगाई कि मेरी गाय डाकू ले गए। उनकी रक्षा करो। ब्राह्मण रक्षा की याचना करके जब आए और बल रहते हुए यदि क्षत्रिय रक्षा न करे तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। अर्जुन ने ये विचार ही नहीं किया कि ये सदाचारी ब्राह्मण है कि जाति मात्र का ब्राह्मण है, कुछ विचार नहीं किया, ब्राह्मण है बस। ब्राह्मण के नाम से वे खड़े हो गए, आदर किया और ब्राह्मण ने कहा, हे अर्जुन, हम तो आपके प्रजा हैं, आप हमारे राजा हो, हमारी रक्षा करो। डाकू लोग गाय ले गए, अभी तो थोड़ी दूर गए हैं और मैं ब्राह्मण ठहरा, मैं शस्त्र जानता नहीं, डाकू लड़ने में बड़े समर्थ हैं, तुम क्षत्रिय हो, लड़ना भी जानते हो, रक्षा करना तुम्हारा काम है, मेरी गाय छुड़ा सको तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरा देखूंगा। अर्जुन ने कहा, नहीं, बहुत ठीक बात है, पर बाद में सोचा कि मेरे गांडीव धनुष और तुनीर तो द्रौपदी के कमरे में रखे हुए हैं और द्रौपदी के पास अभी युधिष्ठिर महाराज विराजमान है और हम भाइयों में ये बात तय हुई है कि यदि कोई जो है वहां बैठा हुआ और कोई दूसरा आ गया तो उसको 12 बरस का वनवास भोगना पड़ेगा। मैं जाता हूं तो 12 बरस का वनवास है, नहीं जाता हूं तो ब्राह्मण और गायों का काम अधूरा रह जाएगा, क्या करूं। सब कुछ विचार करके अर्जुन ने कहा कि मेरे पर जो कष्ट आएगा सहूंगा, ब्राह्मण और गाय का कष्ट मैं नहीं सह सकता। वो गांडीव धनुष लेने के लिए महल में प्रवेश किया और तुरंत डाकुओं का पीछा किया। डाकू अर्जुन को देखकर भाग गए। अर्जुन ने गाय लाकर ब्राह्मण को दे दी और दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभा लगी, द्रौपदी के महल में जाने की बात द्रौपदी को तो मालूम थी पर युधिष्ठिर जी को बताया नहीं था। अर्जुन राजसभा में स्वयं खड़ा होकर महाराज युधिष्ठिर से कहने लगा कि महाराज, अपराधी हूं, दंड दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, क्या बोलते हो, क्या अपराध है तुम्हारा? अर्जुन ने कहा, महाराज, अपने सब भाइयों के बीच में तय हुआ है कि जिस भाई के पास द्रौपदी विराजमान हो उस समय वहां कोई न जाए, पर मेरे सामने समस्या आ गई। ब्राह्मण देवता की गायों की सारी बात बताई, मेरे शस्त्र गांडीव आपके कमरे में थे, आपके कमरे में प्रवेश करके शस्त्र निकालकर गायों को छुड़ा कर ब्राह्मण को मैंने गाय सौंप दी है, लेकिन मैंने नियम में बाधा पटक दी, इसलिए मैं दंड का भागी हूँ। और अपने पांचों भाइयों ने नियम बनाया था कि द्रौपदी के महल में जो प्रवेश करेगा उसको 12 बरस तक वनवास भोगना पड़ेगा, और देवर्षि नारद जी ने भी ये कहा था कि इस नियम के ऊपर तुम सब भाई लोग डटे रहना। तो ये नियम भंग मेरे से हुआ है, अतएव हम भाइयों में कभी झगड़ा न हो, प्रेम बना रहे, इसलिए दंड हमारे को दिया जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारे अंदर कितनी धर्म की बात हुई, अपने मुख से तुमने अपना अपराध, अपनी गलती कह दी। सेठ जी कहते हैं कि आजकल तो अपनी गलती को कोई स्वीकार ही नहीं करता। युधिष्ठिर जी को अर्जुन ने उत्तर दिया कि देखो, इस काम में तुम्हारा व्यक्तिगत तो कोई स्वार्थ था नहीं, तुमने तो गायों और ब्राह्मणों का संकट दूर करने के लिए किया है, तो अपराध के लिए क्षमा भी तो होती है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। आपत्ति काल में गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए थे, तुम्हारा अपराध मैं मानता ही नहीं, और यदि तुम अपराध मानते भी हो तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, राजा हूं, राजा को क्षमा करने का अधिकार होता है और बड़े आदमी को भी क्षमा करने का अधिकार होता है। अर्जुन ने कहा, महाराज, ये बात तो ठीक है, परंतु धर्म की मर्यादा में किसी प्रकार से छूट का आश्रय लेना अच्छा नहीं है, ऐसा करने से और लोग भी धर्म से फिसलने लगेंगे, और मुझे आप 12 बरस के लिए वन में भेजिए ताकि सब लोग इस बात को समझें। युधिष्ठिर जी ने बहुत समझाया कि अर्जुन मैं भी तो धर्म को समझता हूँ। अर्जुन ने कहा, महाराज आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी आज्ञा का अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन धर्म की मर्यादा के लिए 12 वर्ष तो आप मुझे बाहर भेजिए ही। पांचों पांडवों ने तो जुए में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास वैसे ही लिया था, लेकिन अर्जुन ने उससे पहले अपने 20-25 वर्ष की अवस्था में यह 12 वर्ष का और विशेष वनवास लिया। धर्म की मर्यादा का पालन करने के कारण अर्जुन के लिए जो छूट थी, उस छूट को अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया। अच्छे पुरुष इस प्रकार धर्म की छूट की गुंजाइश पाकर धर्म का त्याग करने के लिए बहानेबाजी नहीं ढूंढते, न धर्म की छूट को स्वीकार करते, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आजकल हम लोग धर्म की मर्यादा में थोड़ी सी भी छूट की गुंजाइश मिल जाए तो धर्म का त्याग करने के लिए अटकलबाजी बहानेबाजी लगाते हैं और बड़े बड़े तर्क रख देते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, क्या धर्म है। आश्चर्य होता है, पहले संत महात्माओं एवं अच्छे महात्माओं का जिस प्रकार व्यवहार हमने देखा है, वो व्यवहार आज देखने में नहीं आता। हमारे चूरू में एक बहुत अच्छे महात्मा हो गए थे, उनका नाम बख्तरनाथ जी महाराज था, बहुत अच्छे महात्मा थे, मैंने उनके दर्शन किए थे। मेरे पिताजी की बख्तरनाथ जी महाराज में विशेष भक्ति थी। मेरे पिताजी की दादी जी जब मरने लगी, जब अंतिम समय आया, तब की बात है, उस बात को आज 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए और ये मेरी आंखें देखी घटना है। मैं उस समय बच्चा ही था, उस समय की घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पिताजी ने बख्तरनाथ जी महाराज के पास जाकर कहा कि महाराज मेरी दादी का अंतकाल का समय आ गया है, अंतकाल में आपके दर्शन हो जाए तो ठीक है। अंतकाल का क्या मालूम महाराज, इसलिए मरने से पहले आप पधारिए, दर्शन हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। तब बख्तरनाथ जी महाराज ने कहा, अच्छा किसी समय मेरा उनसे मिलने का विचार है। इस प्रकार जब 2-4 दिन और बीत गए, बख्तरनाथ जी महाराज नहीं आए, तब उनसे मिलने के लिए नहीं आए, तो पिताजी ने फिर जाकर कहा कि महाराज हम आपको याद दिलाने के लिए आए हैं कि अब और ज्यादा दिन की हमारी दादी जी की गुंजाइश नहीं है, शरीर अब कभी भी चला जा सकता है, इस स्थिति पर पहुंचा हुआ है। पिताजी की बात सुनकर बख्तरनाथ जी महाराज हंस दिए और उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, न तो ये कहा कि हम आएंगे न नहीं, हंस दिए, खूब हंस दिए। तो मैं अपने पिताजी के साथ वापिस आ गया। फिर एक दिन अचानक बख्तरनाथ जी महाराज घर पर आए, मैं उस समय वहीं पर था, घर पर ही था, पिताजी की दादी जी के पास। बख्तरनाथ जी महाराज के आने के कुछ ही मिनट बाद पिताजी ने अपनी दादी जी से परिचय करवाया कि दादी महाराज पधारिया है, तने दर्शन करना है, दर्शन कर ले, थारे पर कृपा करने वास्ते महाराज पधारिया है। बाद में महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने कुछ बातें कही, भजन ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, चित्त वृत्ति को अब विशेषता से भगवान में लगाओ आदि आदि। थोड़ी देर वहां बैठे रहे और फिर चले गए। तब पिताजी ने मुझसे कहा कि अब दादी जी का शरीर नहीं बचेगा। मुझे याद है शायद दूसरे दिन ही उनका शरीर शांत हो गया। बख्तरनाथ जी महापुरुष थे, उन्होंने कह दिया कि एक बार मिलने के लिए आऊंगा जब तक वे घर पर नहीं आएंगे तब तक उससे पहले दादी जी का शरीर शांत हो ही कैसे सकता था, क्योंकि महापुरुषों ने मिलने का वचन दिया है, वे उसको पूरा कर चुके, तब दादी जी चले गए। बख्तरनाथ जी महाराज की एक बात और बताता हूं। चूरू में श्री विलासराज जी बुहालका के पिता नंदलाल जी बुहालका थे। मैं और मेरे पिताजी दोनों ही उनके पास जाया करते थे, नंदलाल जी बुहालका के पास। विलास राय जी के पैरों में कीड़ियां पड़ गई, उनको कीड़ी नगरा की बीमारी कहा करते हैं, कीड़ी नगरे की बीमारी। उस बीमारी का इलाज करवाने में विलास राय जी ने हजारों रुपए खर्च कर दिए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई, अंत में निश्चय हुआ कि अब तो पैर को कटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कीड़े नगरे की बीमारी सारे शरीर में फैल जाएगी, जिससे मरना निश्चित है। इसके लिए कलकत्ता जाने का निश्चय भी किया। कलकत्ता जाने के पहले उन्होंने देखा कि बख्तरनाथ जी महाराज के दर्शन करके फिर कलकत्ता जाए, तो वे दर्शन करने के लिए गए। तो बख्तरनाथ जी महाराज ने पूछा, कलकत्ता जाते हो, किस लिए जाते हो? तो उन्होंने कह दिया कि कीड़ी नगरे की बीमारी लग गई, सब लोग कहते हैं पैर कटवाओ, तो पैर कटवाने के लिए कलकत्ता जाने का विचार है। बख्तरनाथ जी महाराज ने उत्तर दिया, कीड़ियां तो बाजार का आटा खाया करती है, अब बाजरे का, बजरे नहीं बाजरे का, कीड़ियां तो बाजरे का आटा खाया करती हैं, इसलिए कीड़ी नगरा पर बाजरे की चुपड़ी पाटिया बांध देना चाहिए, लुपड़ी, बाजरे की लुपड़ी, लुपड़ी का ही है गुआ। अच्छा अच्छा आटा ने गीला कर, अच्छा 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 बाजरे की लुपड़ी पाटिया बांध देना चाहिए। उन्होंने कलकत्ता जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बख्तरनाथ जी महाराज के कहे अनुसार बाजरी का पाटिया बांधना शुरू कर दिया। अब क्या बताए, पाटिया बांधने से सचमुच वो कीड़ी नगरी कीड़ा नगरा बाहर निकल गया, घाव सूखकर साफ हो गया। ये बात बिल्कुल बहुत लोगों की आंखें देखी बात है। फिर एक दिन मैं और राम बल्लभ जी सरावगी बख्तरनाथ जी महाराज के निवास स्थान पर दर्शन करने गए। वे उस समय निवास स्थान पर थे नहीं, मैं छोटा ही था। हम लोग उनके पैर की खोज करते 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 जंगल में धौरों की ओर आगे गए। लगभग आधा मील हम और गए होंगे, तब देखा कि धौरे पर वे महात्मा बैठे हुए थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। हम लोग पास जाकर बैठ गए। बख्तरनाथ जी ने देखा और पूछा, अरे यहां तुम किस प्रकार से आ गए भाई, क्या काम है? तो कहा, हम लोगों ने कहा, महाराज हम तो आपका दर्शन करने के लिए स्थान पर गए थे, वहां आपके दर्शन नहीं हुए तो आपके चरणों के निशान को देखते 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 यहां आ गए। कुछ बातें हुई, उसके बाद बख्तरनाथ जी महाराज ने राम बल्लभ से कहा कि यहां धोरे के नीचे, ध्यान से सुनना, यहां धोरे के नीचे एक बड़ा भारी कीड़ा नगरा है, इस जंगल में इनको कौन अनाज देवे, इसलिए तुम इन कीड़ियों के लिए अनाज डाल दिया करो, तुम्हारी सब कामना पूरी हो जाएगी। तब मैंने कहा, मैंने पूछा कि महाराज मैं भी अनाज डालता रहूं तो मेरी भी कामना पूरी हो जाएगी क्या? तब उन्होंने कहा कि देख भाई, तुम्हारी कामना तो बहुत बड़ी है, राम बल्लभ की कामना छोटी है, राम बल्लभ की सगाई नहीं हो रही है, और ये सगाई कराने के उद्देश्य से ही मेरे पास आता है। कीड़ी नगरा सींचेगा इसकी सगाई हो जाएगी, और तुम आत्म कल्याण के लिए मेरे पास आते हो, तुम्हारी कामना बहुत बड़ी है, इसलिए तुमको मैं कुछ नहीं कहता कि तुम्हारा काम बन जाएगा। इस प्रकार अन्य लोग भी महाराज के वचनों की प्रतीक्षा करते रहते थे, और महाराज कुछ कह दे तो वो वचन काम में लावे, ये हमारा अहोभाग्य, ऐसा लोग समझते थे। उनके वचनों में कितनी शक्ति थी, एक घटना बताता हूं। हमारे चूरू शहर में पहले पंचों का प्रचलन था, अब भी पंच तो हैं। घनश्याम दास जी मंत्री श्री बख्तरनाथ जी महाराज के पास जाया करते थे, ये बात कोई संवत 1959 की है, 109 वर्ष पहले, ये संवत 1959 की है। हम लोगों ने बख्तरनाथ जी महाराज से कहा और सलाह दी कि महाराज आपके पास जो ये घनश्याम दास मंत्री आता है, इसके पास चारे की बागर बहुत बड़ी है, 10,000 मण घास की ढेरी को बागर बोलते हैं, बागर बहुत बड़ी है, इधर घास के बिना गायें भूख मर रही है, यदि आप इन्हें किसी प्रकार संकेत करके कह दे कि बागर का घास निकाल दो और गायों को खिला दो तो गायें बच जाएंगी। बख्तरनाथ जी महाराज ने कहा देखो भाई, हमारा तो ज्यादा किसी को कहने का स्वभाव नहीं है। लोगों ने कहा महाराज किसी व्यक्तियों के लिए तो कहते नहीं है, गायों का काम है, उपकार का काम है, आपके थोड़े से संकेत से काम बन जाए तो गायें बच जाएंगी। इनके पास ये 10,000 मण का घास पड़ा है। महाराज जी ने फिर भी कहा कि भाई आप कहते हो लेकिन ठीक है, अर्थात उनके संकेत करने की भी इच्छा नहीं थी। हम भी सोचे कि महाराज की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। फिर भी बख्तरनाथ जी महाराज ने गायों के हित का विचार करके साहस किया और घनश्याम दास मंत्री के पास महाराज गए, नहीं घनश्याम दास मंत्री महाराज के पास आए। तब उन्होंने पूछा अरे घनश्याम, तेरे पास बागर है क्या रे? कहा कि हाँ महाराज है, गायों के लिए है, घास का बड़ा भारी बागर है। तो महाराज ने कहा तो फिर भाई फिर गायों के लिए खोल दो। तब घनश्याम दास ने जवाब दिया कि महाराज अभी उसको खोलने का समय नहीं आया। महाराज ने कहा समय तो आ गया, अब तू चाहे खोल और चाहे मत खोल, तेरी इच्छा है। घनश्याम दास जी ने उनकी बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और कोई उत्तर भी नहीं दिया, और घनश्याम दास अपने घर को लौट आए। बात थी कि गायें तो घास के बिना मर रही थी, जब ये मर जाएंगी तब घास का क्या उपयोग होगा, इसलिए बख्तरनाथ जी महाराज ने कहा कि समय तो आ गया, अब तेरी इच्छा है वैसा कर। बख्तरनाथ जी महाराज का आदेश जो और लोग सुन रहे थे वे सब के सब घनश्याम दास के घर गए और उससे कहा कि अरे आज तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, अरे बागर तो आगे भी खोलनी थी तो आज क्यों नहीं खोल दो, और महाराज की बात रहती ऐसा मौका कब मिलेगा, महाराज की आज्ञा का पालन हो जाएगा, हो जाता और गायें भी बच जाती। आज तो तुमसे बड़ा भारी अपराध हो गया, बड़ी भारी गलती हो गई। तब घनश्याम दास के भी जच गई कि हाँ गलती तो हो गई, बड़ा भारी पाप लग गया। फिर वे एक दिन महाराज के पास आए और उनसे कहा, महाराज मैंने बड़ा भारी पाप किया, परसों आप बागर खोलने के लिए कहते थे, आप आदेश देवे तो फिर आज बागर खोल दूं। तब महाराज ने कहा, भैया आप तेरी जैसी इच्छा हो तुम जानो, मैं तो अब कुछ नहीं कहता। महाराज एकदम रूखापन से बोल गए। अब क्या बताएं, दो चार दिन बाद ही घनश्याम दास का शरीर शांत हो गया। बख्तरनाथ जी महाराज के कहने का अर्थ लोगों ने यह निकाला कि गायों का समय तो पहले ही आ चुका था, अब घनश्याम तेरा समय आया है। बख्तरनाथ जी महाराज किसी को पुण्य दान आदि के लिए कहते नहीं थे। बीकानेर के महाराजा साहब और रानी साहिबा बख्तरनाथ जी महाराज का विशेष आदर करते थे। हमारे मामा जी बख्तरनाथ जी महाराज के पास ही बैठे हुए थे। बीकानेर के महाराजा साहब का दीवान बख्तरनाथ जी महाराज के पास आया और उसने कहा कि महाराज रानी साहिबा आपका दर्शन करना चाहती हैं, आपको दर्शन देने के लिए उनके निवास स्थान पर जाना चाहिए। महाराज ने उत्तर दिया बख्तरनाथ जी महाराज ने कि दीवान साहब हम लोग साधु ठहरे, हम वहां किसके यहां जाए, अच्छे थोड़े ही लगते हैं। दीवान साहब ने विशेष आग्रह किया कि नहीं महाराज आपको चलना ही पड़ेगा, बहुत बोलने लगे। तब महाराज जी के पास बैठे हुए लोगों ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, विशेष आग्रह है तो पधारिए, लेकिन महाराज जी एक काम करें बड़ा उपकार हो जाएगा, आपसे जब महारानी साहब कहें कि कोई सेवा बताओ, तब आप उनसे ये कहना कि जो ये भीड़ है उसका गायों के नाम से पट्टा कर दो, तो गायों के लिए सदा ले ही बड़ा सुख हो जाएगा। महाराज जी ने कहा ये बात तो अच्छी है, ठीक है। तब दीवान साहब महारानी साहब की टमटम गाड़ी में खूब सुंदर मखमल का गद्दा बिछाकर महाराज जी को लेने आए। महाराज जी चले गए, आ टमटम गाड़ी कौन सी है, अच्छा अच्छा ठीक, तो टमटम गाड़ी में खूब सुंदर मखमल का गद्दा बिछा करके महाराज जी को लेने आए। महाराज जी चले गए। दीवान साहब ने मनी मन सोचा, महाराज जी आज राजा वाली सवारी में आए हैं, आज इन महाराज को कितना सुख मिला होगा, ऐसी सवारी इनको कहाँ मिलती है, देखो इन महाराजाओं का भी साधुओं का भी भाग देखो, कैसी कैसी टमटमे गाड़ी में बैठते हैं। फिर पूछ भी लिया, महाराज आप इस मखमली गद्दी पर बैठे करके यहां आए, आपको कुछ आराम सुख मिला? तो महाराज ने उत्तर दिया, आज तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने मुझे कुंभी पाक नरक में लाकर बैठा दिया। हमारी ये बात आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, दीवान साहब आप इसको नहीं जान सकते। अपने में भी कौन समझेंगे इस बात को, अपने भी समझ में कहां आती है। हम लोगों को इत्र फूले लवेंडर खूब अच्छे सुगंधी मालूम देते हैं, पर विरक्त पुरुष को ये वस्तुएं पेशाब के समान लगती हैं। दीवान साहब सुनकर अवाक रह गए। महारानी ने महाराज जी को भोजन कराया, उचित खातिरदारी की। महाराज जी भोजन पाकर लौटने लगे, तब महारानी साहिब ने महाराज जी से पूछा, महाराज कोई हुक्म फरमाए। महाराज जी का कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई हुक्म नहीं। रानी साहिबा ने विशेष आग्रह किया कि महाराज कुछ भी आप आदेश दीजिए। तब महाराज जी ने कहा कि रतनगढ़ में जो बीड़ पड़ा हुआ है, उस बीड़ का पट्टा गायों के नाम करवा दीजिए, गायों को बड़ा कष्ट हो रहा है। उस बीड़ का पट्टा गायों के नाम हो जाने पर अन्य लोग उसमें अपनी रेवड़ नहीं चरा सकेंगे, न लकड़ियां काट सकेंगे, और गायों को बड़ा आराम हो जाएगा, इसलिए गायों की रक्षा का इंतजाम होना चाहिए। उस समय महाराजा साहब भी वहीं पर थे, उन्होंने कहा अच्छा महाराज ये काम हो जाएगा। महाराज साहब ने फिर कहा और हुक्म फरमाओ। तो बख्तरनाथ जी महाराज ने कहा अब और कुछ नहीं चाहिए। महाराज साहब ने बीड़ का पट्टा गायों के नाम करवा दिया और महाराज जी वापिस अपने निवास स्थान पर लौट आए। इधर लोगों को जब ये बात मालूम चली कि कुंभी पाक नरक वाली बात ये पता चला, तो ये क्या बात है। तब उनसे महाराज से ही पूछा, बख्तरनाथ जी महाराज से, कि महाराज ये कुंभी पाक नरक कैसे बताया। तब उन्होंने कहा कि देखो राजा का अन्न खाना बहुत बुरा होता है, आप ऐसा मानते हैं तो फिर सवारी में बैठकर क्यों गए, फिर वहां भोजन क्यों किया। महाराज ने उत्तर दिया कि ये सब मैंने केवल गायों के लिए किया। ये आपको बख्तरनाथ जी महाराज की बात सुनाई, बहुत सी बातें मेरी आंख ही देखी हुई है, बहुत सी बातें सुनी हुई है। तो पहले के समय में बोलने में सभ्यता शिष्टाचार होता था। बख्तरनाथ जी महाराज बहुत दिनों तक जीवित रहे, ये तो आपको बहुत थोड़ी सी बात बताई है। बख्तरनाथ जी महाराज अपने संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में बहुत उच्च कोटि के विरक्त महापुरुष हो गए। उन्हीं में मंगलनाथ जी महाराज भी थे, वे भी बहुत विरक्त महापुरुष थे, शेष में दो ही रह गए थे, बख्तरनाथ जी महाराज और धर्मनाथ जी महाराज। धर्मनाथ जी महाराज बड़े सच्चे और तेजस्वी पुरुष थे, क्षत्रिय जाति के थे, वे अनीति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बख्तरनाथ जी महाराज में ज्यादा साधुता, दयालुता, विनयशीलता थी। एक समय एक पंडित जी बख्तरनाथ जी के पास जाकर बड़ी उद्दंडता के साथ बैठ गया। यह देख करके धर्मनाथ जी बर्दाश्त नहीं कर सके और क्रोध में आकर के कहा, ए पंडित, तू महाराज के सन्मुख इस प्रकार बैठा है, बैठने की सभ्यता नहीं है। देख इस प्रकार से या तो उठ जाने, तो अभी डंडे से तेरे पैर तोड़ दूंगा। पंडित घबरा गया और वो बख्तरनाथ जी महाराज के चरणों में गिर गया, महाराज मेरा अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। एक समय की बात है, एक सज्जन आसाम से इरंडी बख्तरनाथ जी महाराज को भेंट करने के लिए लाया और महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी ने कहा, बख्तरनाथ जी महाराज ने, कि भाई हम लोग तो साधारण कपड़ों की जरूरत रखते हैं, साधारण कपड़े। कीमती चीजें साधु को कलंकित करती हैं और साधु को वो अच्छी भी नहीं लगती है। उस सज्जन ने कहा, महाराज ये इरंडी तो मैं आपके निमित्त ही लेकर आया हूं, इसलिए ये इरंडी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। महाराज जी ने कहा कि भाई मेरे निमित्त लेकर आए हो, अब तो मैं इसको नहीं लूंगा। बहुत मना किया महाराज जी ने, पर वो सज्जन भी बड़े हठीले, उन्होंने इरंडी वहीं रख दी, छोड़ के चले गए। महाराज जी ने देखा कि ये चीज साधुओं के काम की नहीं है, क्या करें। इसके पीछे पीछे भेजे करें तो बुरा लगेगा। तो उसके संतोष के लिए उसका पीछा तो नहीं किया, अपने पास रख लिया। दूसरे दिन एक विद्वान ब्राह्मण महाराज जी के पास आया और उसकी दृष्टि बार बार इरंडी पर जाए, इरंडी देखे हो, और कहने लगा कि महाराज इरंडी तो बड़ी अच्छी है ये। उसको छू करके देखने लगा कि महाराज इरंडी ये तो बहुत अच्छी इरंडी है, महाराज बहुत अच्छी है, कहां से लाए महाराज इतनी अच्छी इरंडी, आपके यहां कहां से आई? महाराज जी ने कहा कि देखो एक अमुक अमुक सज्जन है, वो गुवाहाटी से लाया था, यहां छोड़कर चला गया, उसने भी यही कहा इरंडी बहुत बढ़िया है। तो महाराज जी ने देखा कि अब इस पंडित का मन भी हो गया और अच्छा भी बता रहा है, महाराज जी ने वो पंडित जी को इरंडी दे दी। लो महाराज इसको आप ले जाओ। वो ब्राह्मण उसको लेके बहुत खुश हो गया, उसने उसको वाह मुझे बहुत अच्छी रंडी दी महाराज ने। वो ब्राह्मण ऊपर ऊपर से बोलने लगा कि महाराज ये तो आपके लिए दी है, मुझे आप क्या देते हैं? महाराज जी ने कहा देखो बढ़िया चीज साधुओं के लिए होती नहीं है, यह तो विद्वानों के और पंडितों के काम की है, आपको ले जानी पड़ेगी। तो उसने कहा कि महाराज मैं ले तो जाऊंगा, मैं ले तो जाऊंगा, पर उस बढ़िए का जी दुख पाएगा, क्या करूं? महाराज जी ने कहा कि उससे उस बनिए से तुम कहना ही नहीं कि मैंने ले ली, तुम उसको कहो ही क्यों, तुम्हारे पास ही रखो, हम चाहे जैसे करने में स्वतंत्र हैं। इस प्रकार जबरदस्ती करके उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दी। किसी वस्तु में कोई मन चला गया तो वो वस्तु उच्छिष्ट हो गई, अपने काम की नहीं रही। महाराज जी ने देखा कि इसको ये प्रिय लगी है, इसलिए अपने अब काम में लेंगे तो हमारे जी के अंदर शांति नहीं होगी। ऐसे बख्तरनाथ जी महाराज का त्याग था, वैराग्य था, उच्च कोटि के महापुरुष थे। ये जो वटवृक्ष के सामने गंगा जी के उस पार जो झाड़ियां दिखाई देती हैं, इन झाड़ियों में भी हमने बहुत उच्च कोटि के महापुरुषों के दर्शन किए थे। उनमें एक स्वयं ज्योति जी महाराज रहते थे, वे भी अब विदा हो गए। अब थोड़े बहुत साधु महात्मा झाड़ियों में हैं, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। साधु पुरुषों की संख्या आजकल बहुत कम है, कोई बिरला ही होते हैं। वेशधारी तो बहुत है लेकिन साधु पुरुष बहुत कम है। राम